पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते थे, कहा करते थे कि हे बोली आत्मा, तू कहां सुख तलाश कर रही है? 21 ब्रह्मांड में कोई सुखी नहीं। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और कृत्रिम बाजी सभी ठगी है। घर घर में आग लगी है, किसी का शांति रही नहीं। क्यों? क्योंकि हम भक्तिहीन हो गए और सभी धन कमाने के लिए, प्रत्येक नीचे से निम्न स्तर का भी कार्य करने के लिए उद्धत हो जाता है प्राणी, फिर भी सेठ नहीं बनता, क्योंकि ये तरीका धनवान बनने का नहीं है। धनवान बनाकर भगवान की रजा से, हम अपने तरीके से धनवान बनना चाहते हैं, कोई मिलावट करके, कोई रिश्वत लेकर, कोई चोरी करके, कोई डाके मार के, कभी भी जीव उभर नहीं सकता, दोनों ब्रेक डाउन होगा। अब कारण क्या है कि जो आपके प्रारब्ध में लिख दिया आपके पूर्व संस्कार से, वो चैद नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक आप पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण में और पूरे संत उन्हीं के कृपा पात्र, उनके द्वारा भेजे गए नुमाइंदे संत की शरण में नहीं आओगे, तब तक केवल आपको वर्क डन मिलेगा, आपका पूर्व जन्म का किया हुआ संस्कार ही मिलेगा। आपके भाग में दुख है तो दुख ही होगा, और सुख है तो आपको धन है, कोई सुख किसको मानते हो? कोई संतान होगी, एक अधिकार कोठी होगी, बस इसको सुख मान लेते हो। और ये सुख है कितने दिन का? कल मृत्यु हो जाए पर सोगदा, क्या सुख है ये? तो ये स्वीकार करना पड़ेगा। तो कैसे हम धनवान बनेंगे? परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर और पूरे संत से नाम लेकर के और उनकी मर्यादा में रहते हुए आप भक्ति करके देखो, और फिर देखना वो परमात्मा आपको अपने कोटे से भी धन देगा। फिर आपको ऐसा विधि बताई जाएगी जिससे आपको ऑटोमेटिकली आपके पाप कर्म तो खत्म हो जाएंगे, संकट आने वाले के जो कर्म थे वो नष्ट हो जाएंगे और उनके स्थान पर पुण्य वृद्धि हो जाएगी, तो आपको परमात्मा धनी बनाओगा। आप बीमार होगे और उसमें 20,000 रुपये लग गए और आपने दो नंबर से कमाए 5,000, 15,000 घाटे में गए और पाप न्यारे, वो पैसे भी गए और पाप न्यू के न्यू रह गए, जिस कारण से आपने दो नंबर तक धन कमाया था। एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र था, वो बीमार हो गया, पहले छोटे डॉक्टरों से दिखाया जाता है, फिर इधर जाड़े जूड़े वालों के पास, फिर संतों के पास, फिर झाड़ा लगवाणियों के पास, फिर ताबीज बंधवाणियों के पास, खूब ठगया। फिर डॉक्टरों ने आखिर में यहां लोकल डॉक्टरों ने कह दिया कि मेडिकल में चेक कराओ। वहां चेक कराया उसने, उन्होंने बता दिया कि इसके दोनों किडनी खराब हो गए और पीजीआई दिल्ली भेज दिया, ऑल इंडिया दिल्ली भेज दिया। वहां किसी रिश्तेदार से गुर्दा गर्दा लिया, पैसे पुसे लगे, यानी 3.5 लाख रुपए में वो किडनी चेंज होगी। लड़का स्वस्थ हो गया, खुशी मनाई, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति ये दास को बता रहा था कि जो आप कथा कर सत्संग करते हो ये मेरे ऊपर पूरी लागू हुई। उसने क्या बताया कि मैं बहुत निकम्मा आदमी था, मैं बहुत जुल्म किया करता था, अब मुझे दिखाई दिए हैं आपके सत्संग के बाद आंखें खुल गई, मैंने कितने पाप करे थे। अब क्या हुआ कि उसने 6 महीने के बाद वो लड़का बस एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मारा गया, इकलौता पुत्र हो गया नाश, जिसके लिए वो धन कमावा था, मेरा बेटा सुखी रहेगा, कोठी बना दूंगा उसके लिए, कार लूंगा, वो बेटा ना रहा। और जिस विधि से उसने धन कमाना चाहा था वो पाप न्यो के न्यो रह गए। इव गधा बनेगा, किसी का बैल बनेगा, वो पूरे करेगा जिसके उसने जो ठगे थे, वो दुख बहुत भारी बन जाओगे। उसने बताया था कि मेरा जो धंधा था कैसेटों का था, प्रहार में शुरू शुरू में एक कैसेट 40-40 थी, जो 32 रुपए की कैसेट मिला करती, ये दास भी लाया करता आज से 20 वर्ष पहले, 32 रुपए की, और ऊपर मार्का होता सोने का और माल होता उसमें डुप्लीकेट, वो रिफल, कहता वो काम कराया करता मैं, मुझे वो कैसेट इंक्लूडिंग उसके कवर और रिफल के थोक के बात लिया था 2 रुपए में पड़ा करती है, और मैं 32 रुपए लिया करता, 30 रुपए, 32 रुपए, 35 रुपए, जैसा जैसा दाव लग गया। और कुछ ही दिनों में मेरे पास खूब पैसा हो गया। अब मैंने एस्टीमेट लगाया कि 2.5 लाख रुपये कमाए थे मैंने 5 साल में, और 1 महीने के अंदर 3.5 महीने, 1.5 महीने के अंदर 3.5 लाख रुपये मेरे बर्बाद हो गए, कर्जा और हो गया। और इस दास ने बताया कि ये पाप तेरे ऊपर न्यो के न्यो रह गए, ये भोगने बेटा बाकी है, पैसा रहा नहीं। फिर उस प्यारी आत्मा ने उपदेश लिया, अपना कल्याण करवाया कि परमात्मा कबीर जी की शरणवाणे से ठीक, आपसे पहले जो हुआ सो हुआ, पर आगे गलती मत करना, आपके पाप नाश हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, यदि तुमने धनी भी बनना है तो भी मेरी शरण में आओ, कबीर जी कहते हैं, फिर तुम्हें यहां का धन भी दूंगा। जैसे विभीषण जी ने और मंदोदरी जी ने, कबीर परमेश्वर जब मुनिंदर नाम से आए हुए थे उनके उपदेशों को ग्रहण किया था, उन्होंने उस कबीर परमेश्वर यानी मुनिंदर जी रूप में आए त्रेता युग में परमेश्वर से उपदेश लिया था और भक्ति की थी, जैसा उन्होंने बताया मर्यादा में रहे थे। जिस लंका को रावण ने घोर तपस्याएं करके प्राप्त किया था, वो लंका श्री शिव जी की साधना करके सिद्धि रिद्धि प्राप्त की थी, उस लंका को रावण नहीं रख सका, वो विभीषण को मिली। उस कबीर परमेश्वर के उपासक विभीषण वहां का राजा बनाया प्रभु ने। कहते हैं जय तुझे राजपाट भी चाहिए, अमरा दरले ध्यान, ये बकवाद छोड़ दे। परमात्मा कहते मन हूं मनोरथ छोड़ दे, तेरा किया ना हो, और जब पानी में घी निकले तो लूखा कहो ना कोई, कोई नहीं खावा लूखा, जब पानी में बिलोए तो घी निकलता होता है, इन बकवादियां तो सुख होता हो या धनी होता हो कोई ना करके खावे। एक चोर था, वो चोरी करता था, एक भक्त किसान था। परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं रूपांतर करके, एक जीवन तो वो अपना वैसे जीते हैं और समय समय कहीं कहीं प्रगट होकर 10-20 वर्ष कहीं रह गए, 10-20 वर्ष कहीं रह गए, अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से भक्ति से सैचुरेट करते रहते। तो वो रूपांतर करके प्रभु आए हुए थे, गुरु रूप में संत रूप में विराजमान थे। उनका शिष्य था एक किसान। जब उसने उपदेश लिया ही था, कुछ दिन के बाद वो बहुत निर्धन था, उसके पास एक ही बैल था खेती करने के लिए, और उस बैल को उस चोर ने चुरा लिया, एक चोर ने। अब चोर ने वो मान ली 100 रुपए का बैल था बेच, उसने तो जितने पैसे मिल जाए उतने ठीक, कौन सा मोल ला रखा था, वो बेच दिया 30-35 का और खाए पिए मौज उड़ाई, पुराने समय की बात है। अब उसमें 100 रुपए का आज 10,000 का बैल, इतनी तुलना समझ लो। अब उसने फिर, क्योंकि चोर ने तो कमाए थे, खा पी फुर्रोए, फिर भूखा मरा, फिर चला चोरी करने के लिए, घूमता घूमता उसी साइड चला गया। उसने देखा ऐसे झांक के उसी पहले वाले जिसका एक बैल चुरा के ले गया था, उसने देखा ऊपर से झांक के उसके दो बैल बहुत सुंदर मजबूत तगड़े तगड़े दो बैल थे। उस चोर ने उसके दो और चुरा लिए, उसी के दो और चुरा के चला गया। उसने ये सोचा कि ये आदमी हा उल्लाविना करता ना कि तब पुलिस रिपोर्ट करता, ये सीधा सा आदमी इसके के चुरा ले। अब उसने वो भी साल दो वर्ष में खा पी कर बर्बाद किए। फिर वो उसी क्षेत्र में आ रहा था, उन्हें सोचा उसका तो नाश हो लिया होगा, उसके पास तो होगा ही नहीं, फिर भी किसी और के चोरी करने के लिए चला। रस्ते में वही घर पड़े था, फिर झांक के देखा, उसने क्या देखा कि उसमें 4 बैल थे, 4 बैल एक तगड़े तगड़े खगड़ जैसे। अब उस चोर ने तो पेट पकड़ लिया, रतरा गजब हुई, मैं इसके 3 बैल चुरा ले गया, मेरा तो नाश हो गया, मेरे पास तो 54 नहीं, इसके 4 बैल आ गए। भाई इस आदमी से तो पूछना चाहिए केजा दूजंत्र जाना है ऐसा। तब उसने क्या किया, वो किसान, गर्मियों के दिन थे, किसान बाहर सो रहा था अपने आंगन में, बैल साइड में बंधे हुए थे। उस चोर ने वो किसान उठाया, किसान कहने लगा भाई कौन है तू, मुझे सोने, वो बोला मैं चोर हूं। किसान बोला भाई मुझे सोने दे, सारा दिन खेत में काम किया, नींद आवे है तू अपना काम कर और मुझे निंद्रा लेने दे, तू कर ले अपना काम, चोर है तो कर चोरी, तेरा काम चोरी करना है, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अब वो चोर कहता है भले मानस हुआ, चोरी ये तो ना होती मेरे भाई भी, या चोरी ना हो रही मेरे से, एक बार उठ मेरा भाई, उसके पैर पकड़े माथा टेक कर, तू खड़ा हो एक बार, उठ लिया, क्या बात भाई भगत जी बता। और चोर कहने लगा भाई एक बात बता, मन मार दिए थे छोड़िए भाई, साची बताऊंगा आज, तेरा पहल मैं चोर हूं, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा के ले गया था, और तेरे दो बैल बंदे पाए, और वो दो भी मैं चुरा ले गया, आज तेरे 4 बैल हर मेरा नाश हो लिया, नो का नो, बालक भी बीमार, किसी का कुछ हो रहा, हर पैसा मेरे पास नहीं। भाई ये क्या कारण है, ये कौन सा जंतर मंत्र तेरे पास है मुझे भी बता दे। किसान बोला भाई जंतर मंत्र तेरे पर हो को ना, तेरी आदत बिगड़गी, क्यों चोरी करके जो खा लेगा उस पर काम ना बने। नो बोला भाई मैं कति काम, जो तू कहेगा मैं वह कर लूंगा। तो उसने कहा भले मानस, भले पुरुष, यदि चोरी करके दो नंबर तक कोई सेठ होता फिर कौन करके खावे, सारी चोरी करने लग जावे। आप भाई एक शर्त है, आप हमारे गुरुजी के पास चलो उपदेश ले लो और ये बुराई छोड़ दो, एक साल में 2 वर्ष में तुझे दिखा दूंगा तेरे ठाट होए, भगवान सब कुछ कर सकता है। वो कहने लगा भाई जैसे तू कहेगा मैं ऐसे कर लूंगा। अगले दिन काम छोड़ दिया, उस किसान ने खेत नहीं जोता, उस दिन उसको नवाया धोवाया, खा खाना खा और चल सतगुरु के पास चलेंगे। उसने सारी बता दी तो सतगुरु जी के सामने जा गए। अब संत जी कहने लगे बेटा तेरा सौभाग्य है, तेरे ईब भी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, फिर वो ज्ञान सुना, रोने लग गया वो चोर के है, भगवान मन तक घने पाप कर दिए इस पापी के, तो कभी ये पाप भी समाप्त हो जाओगे। उसने क्या बताया चोर ने कि एक व्यक्ति वो श्याम ने भैंस लाए, 6 महीने में उनको भैंस का जुगाड़ बना, कुछ अपने घर से पैसे इकट्ठे किए, कुछ दूसरों से इकट्ठे किए, वो भैंस लाए और परिवार के लोग बड़े खुश हो रहे, मैं छुप कर बैठ गया उस चोरी करने के लिए। वो बच्चे कह रहे थे माँ माता पिता से कि बहुत दिनों में दूध हुआ है, मेरी दही रखना, मैं मक्खन खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, और बड़े खुशी मना रहे। रात ने मैं चोरी कर ले गया उसको, अब क्या बीतती होगी उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो सुबह हाहाकार मची होगी। तो ये पाप परमात्मा मेरे कट जाएंगे। प्रभु बोले, गुरुदेव बोले, बेटा ठीक है, अनजाने में ये प्राणी ना जाने कितनी गलतियां कर देता है, पर उपदेश ले, आज के बाद पाप मत करिए, नहीं फिर अक्षमानी होगा। दोनों कान पकड़ दिए, जी फिर चोरी नहीं करूंगा। फिर उसने कहा जा उपदेश ले और भक्ति कर बेटा, देख रंग भगवान के कुछ दिनों में। अब उसके बच्चे बीमार थे, उधर से चोरी करके ले जा, उन बच्चों में लाग जा, एक अंधा हो रहा है, कि टांग टूट पैरालिसिस हो रहा, इस तरह बुरा हाल उसका। उन बच्चा ने लिया ठा के सारा ने, एक गुरु जी उपदेश दे दो, इन पर दया करो। वो नाम लिया धीरे धीरे बगैर ही औषधि के, मालिक के आशीर्वाद, वो बालक भी ठीक होने लगे। अब उस किसान ने कहा कि ले भाई ये एक बैल तू और ले जा और अपना कमा ले, धंधा करके खा भाई। वो कहने लगा भाई बैल तो मैं ले जाऊंगा तेरा एक, पर तेरे पैसे दूंगा सारे, पहले वाले बैलों के भी और इसके भी। किसान बोला भाई वह तले तेरी मौज है, बाकी मैंने तेरे पैसे ही कति हो सकता नहीं। तो उसने क्या किया, अपना धंधा करना शुरू किया। 2-3 वर्ष के बाद उसका खूब ठीक गुजारा हो गया। तो 2-3 बैलों के पैसे, 4 बैलों के पैसे लेकर उस किसान के पास आया। कहने लगा भाई तेरा बुलाओ, आपने मुझे बहुत ही अच्छा मार्ग दिखा दिया और ये पैसे ले तेरे सारे। उससे किसान बोला भाई मेरे को पैसे मेरे परमात्मा ने दे दिए थे, 4 बैल बांध दिए मेरे, एक सीजन में इतनी कणक होगी थी मेरे पास, उन 4-3 बैलों की चोरी के भी सब में ठाठ कर दिए, ये पैसे मालिक को दे तेरा पुण्य बनाए। वो दान करवाए दाता के पास, गुरुदेव के पास जाकर। तो पुण्यात्माओं, हम परमात्मा की परिभाषा से बहुत दूर हैं, परिचित भी नहीं है, इसलिए हम पाप पे पाप करते जा रहे हैं, दूने दुखी हो रहे हैं, और पैसे की होड़ लगी, 2 नंबर के काम थे, किसी तरह भी पैसा हो, पैसा ही पैसा दिखाई देता है संदेह प्राणी में, और पैसा भी परमात्मा बिना आपके पास आ नहीं सकता, दूना दुखी होगा। तो यहां परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि सुख तो यहां है ही नहीं, लेकिन निर्धन ये सोचता है ये धनवान सुखी होंगे, मेरे पास माया आ जाए, माया आए पाछे देखियो आप किसे सुखी होगे, दूने दुखी। पूछो मत, इन सेठा ने पूछ लो कि हालत से उनकी, क्योंकि माया एक बार आई ना और आदमी का मस्ती छाई ना, पहले तो भगवान से दूर करेगी, क्योंकि हम इस झूठे सुख को सुख मान लेते हैं, धन हो जा, एक कार कोठी हो जा, 10 आदमी सलूट करनी हो जा, बस फिर तो टीटी पाक जाए। और परमात्मा कहते हैं या तो पृथ्वी पति, पूरी पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती राजा चकवा, वो भी सुखी नहीं भाई, देवराज इंद्र का राजा भी सुखी नहीं। क्या बताते हैं भाई, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ये रंक दुखी बपरीती हो, सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कहें कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। अब क्या बताते हैं भाई, इंद्र भी दुखी, सुरपति देवताओं का राजा दुखी, और पूरी पृथ्वी का राजा दुखी, और रंक दुखी बपरीती हो, और गरीब तो स्वाभाविक दुखी, निर्धन तो स्वाभाविक दुखी, और कौन सुखी, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब मन जीता कैसे होगा, परमात्मा की शरण में आवे, और गुरुजी बताते हैं परमेश्वर का विधान के बीड़ी शराब मास्त माखू जर्दा, कभी छूना भी नहीं है, यदि तूने कुछ सुख चाहिए जीवन में, ये सबसे बड़े शत्रु हैं इस प्राणी के, इनको कभी नहीं खाना चाहिए। बकवाद करेगा क्योंकि इसने तो आपको पशु बनाने का कंट्रैक्ट ले रखा, ठेका ले रखा। इस मन को इन बुराइयों से हटावे और परमात्मा के चरणों में लगावे। मन चाहता है कार खरीदूं, कोठी खरीदूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब मन के खरीद सोचने से और कहने से कुछ नहीं होगा, परमात्मा में समर्पण कर दे भगवान में, कि प्रभु जैसे भी आपने इस दास का हित लगे उतना ही देना, अधिक नहीं। और फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे आज दिन में उदाहरण आपको सुनाया था कि साई इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, कल दो सत्संग में सुनाया था आपको, और हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि न भूखा जावे, यानी इतना जीत दीजिए जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, यानी परिवार की आवश्यकता पूरी हो, कोई अतिथि आ जाए वो भी दो रोटी खा के जावे, और हम भी भूखे ना सोवा, परमात्मा बस इतना दे रहा। अब परमेश्वर कबीर जी ने उदाहरण दिया था, भाई देखो मैं खुद कितना निर्धन बन के एक जीवन व्यतीत किया, हमें उदाहरण देने के लिए, एक झोंपड़ी में रहते थे, कपड़ा बुनते थे, और जो भी उसकी कमाई होती थी उसी से पैसा लेकर कुछ अपना घर गृहस्थी का अन्न लाते थे, क्योंकि दो माता पिता थे, मुंह बोले और दो बालक थे जो मुर्दे जीवित कर रखे थे, लड़का और लड़की बेटी रूप में रखे हुए थे, बेटा बेटी रूप में रखे थे। परमात्मा कबीर जी का किसी से जन्म नहीं हुआ, ना उनकी कोई संतान थी, ना उनकी कोई पत्नी थी। ये झूठे लोगों ने परमात्मा को जो है ना दूसरे ढंग से पेश कर दिया, बिल्कुल गलत ज्ञान प्रचार कर रखा था। तो वो क्या करते थे, जो भी धन आता था, कमाई होती थी, अपने परिवार का कुछ खर्चे खातर लेते, बाकी शेष का धर्म में लगा दिया करते थे। अब आप जी को ये उदाहरण देते हैं कि जोड़ जोड़ के मत धरो, परमात्मा में विश्वास रखो, जितना हो धर्म में लाओ, और फिर देखना। अब उस परमात्मा ने यह दिखाया कि मेरे द्वार पर 18 लाख अतिथि आ गए थे। अतिथि का अर्थ होता जिनके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो, अचानक आ जाए। अब वो उन दुष्ट लोगों ने चिट्ठियां डाल दी परमात्मा को लज्जित करने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए, लाखों लोग 18 लाख व्यक्ति आ गए कबीर जी के अतिथि बन गए। परमात्मा कहते हैं मेरे अतिथि भूखे नहीं गए, 3 दिन रटे, 3 दिन रुके, और तीनों दिन भरे भंडारे चले, जो भी खान योग्य चीज थी जिसने डिमांड की, लड्डू की इच्छा थी लड्डू आ रहे हैं, जलेबियों की इच्छा करता जलेबी आ रही है, कचौड़ी पकौड़ी खीर खांड हलवा, और 18 लाख अतिथियों को 3 दिन तक भरा भंडारा दिया, और फिर प्रत्येक खाने के उपरांत एक दोहर और एक असरफी, जैसा भी चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिखा था वो भी दिया। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे रहो तो मेरे ऊपर आश्रित कहो के, फिर देखना। आन दे कहते कल्पे कारण कौन है, और कल कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ा धनी ते काम। जब धनी का काम था वहां पर ना पूरी काशी का के दाने इकट्ठे कर ले गेहूं तो 18 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते, और वहां परमात्मा ने डूंडा ठा दिया। अब मन जीती का अर्थ है कि गुरुजी के वचन पर डट जा। गुरुजी कहते हैं ये बुराई मत करो, तुरंत त्याग दो, ये भक्ति करो, हाथ से जितना पुण्य हो सके अवश्य करो। परमेश्वर जी कहते हैं चढ़ी चोंच भर ले गई नदी ना गट्यो नीर, और दान दिए दन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। पुण्यात्माओं प्रसंग था कि तन धर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करें मन सब का किया विवेक का। जो चक्रवर्ती राजा उदय अस्त, जिसके राज्य में सूर्य अस्त ही नहीं होता, उदय जहां होता है और अस्त जहां होता है, यानी पूरी पृथ्वी का शासन जिसके पास है, वो इंसान भी कभी सुखी नहीं हो सकता जो भक्त नहीं है। जो सच्चा भक्त नहीं है, सत भक्ति नहीं कर रहा है, पूरे संत की शरण में नहीं है, तो फिर कहां सुख है। तो परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। यहां मान लीजिए पूरी पृथ्वी का राजा है, तेरी बड़ी महिमा हो रही है, ठाठ हो रही है, दुनिया तेरे गुण गा रही है। एक मान धाता चक्रवर्ती राजा था, और उसने पूरी पृथ्वी के ऊपर अपने शासन की जांच करने के लिए कि कोई छोटा राजा मेरा विरोधी तो नहीं बन गया है, एक घोड़ा छोड़ा था कि इस घोड़े जिसने मेरी अधीनी स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़कर बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। 72 अक्षौणी सेना राजा मानदाता चक्रवर्ती के पास थी, 72 करोड़, और वो उस घोड़े के गले में एक पंपलेट लिख कर डाल रखा था कि पकड़ने से पहले पढ़ लेना इसमें क्या लिखा हुआ है। तो किसी ने नहीं पकड़ा, पूरी पृथ्वी पर घोड़ा घूमया, तो चुनक ऋषि था एक, ये काल का उपासक, उसने वो घोड़ा पकड़ दिया और मानधाता चक्रवर्ती ने 72 करोड़ सेना के 4 पार्ट बनाए, 18-18 करोड़ के, एक पार्ट भेज दिया, एक टुकड़ी भेज दी 18 करोड़ की। उधर से ऋषि चुनक ऋषि ने पूरे जीवन की अपनी कमाई से 4 एटम बम बना लिए, पुतली बोल रहे उनको, ऐसे 4 एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ का नाश कर दिया सेना का, दूसरी छोड़ दी। कहने का भाव ये है कि वो पृथ्वीपति दुर्गति को प्राप्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो। उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषि स्वर कल्प करी तब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। यस माने यहां तो क्या महिमा बनाना चाहता है, कार खरीद के और आसपास के लोगों में प्रभु बनना चाहता है कि ओ बड़ा सेठ आदमी है। कहते हैं सर्व सोने की लंका होती, ओहो ये क्या दिखाते हैं मूर्ख लोग अनजान, 4 गुठी पर रे मोटी मोटी ओतरा और गुणे बिशी मोटी चैन। अरे कुतर वो, कबीर साहब कहते हैं तुम विशीषा मांडी पाएगी, रावण ने पूरी सोने की लंका बना रखी थी, जैसे हमने मकान बना रखे ऐसे सोने की लिपाई, सोने की ईंट स्वर्ण, और आज उसका कितना नामो निशान नहीं, ये क्या सुख है। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। ओह अब सुख सागर किसे कहते हैं, भाई शंखो लहर मेर की उपजे, क कैर नहीं जा कोई संखों लहरे मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई दास गरीब अचल अविनाशी सुखा सागर सोई मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे संखों लहर मेहर की उपजे। एक समय कभी कभी आप एकांत में बैठे हो एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से इतना आत्मा निर्मल बन जाता है कि दुश्मन भी दुश्मन नहीं लगता उसके प्रति भी प्यार भाव बन जाता है उसके ऊपर भी रहम बन जाता है। लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की उसके बाद फिर वही कैर की लहर उसने ये कर दूंगा उसको ऐसा केस करूंगा ऐसा हो गया लड़का बीमार हो गया बेटी दुखी हो रही है पति बटे उस शराब पी रहा है ऐसा घाटा हो गया उसमें न्यू हो गया यानी कोई ना कोई सौ प्रकार की वह कैर की लहर शुरू होगी और वह मेर की लहर थी थोड़ी सी देर रुकी थी। कहते वहां सतलोक के अंदर जाकर जहां से तू आया है बावले ए भोले प्राणी जहां से जहां तू रहता था और जिस सुख को तू तलाश कर रहा है वो यहां नहीं है वो उस सतलोक में है। उस सतलोक के अंदर संखों लहर मेहर की उपजे और कहर नहीं जा कोई और दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई वो सदा रहने वाला स्थान है वो कभी वो शाश्वतम स्थान है सतलोक। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन गीता ज्ञान दाता कह रहा किसी और भगवान परमेश्वर की शरण में जाने से को कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ओह परम शांति को प्राप्त होगा और शाश्वतम स्थानम शाश्वत माने सदा रहने वाला कभी नाश ना हो जिसका। अब ब्रह्म लोक तक तो सारे नाश हुआ नहीं किस ब्रह्मंड का नाश सत्संग ब्रह्मंड का नाश लेकिन सतलोक अलख लोक अगम लोक अनामी लोक उन लोकों का कभी भी नाश नहीं होता। तो उस वहां चलने के लिए परमात्मा कहते हैं जहां तुम रहा करते थे और वहां जाकर तुम्हें सुख होगा वह ना तो जाड़ पड़वानी कि बुढ़ापा नहीं आवे ना आंख बनवानी ना बीपी आई हो ना लो हो ये पांच तत्व का पुतला नहीं है वहां पर वहां तो एक नूरी शरीर है एक तत्व का असनाविरम सुक्रम अकायम। ओह वहां परमेश्वर का भी शरीर ऐसा ही है नूर का है अपना भी नूर का है। अब जैसे ये पारखी है कबीर पंथ में पारखी बने हुए हैं कबीर साहिब के पंथ में कबीर जी का नाम लेकर पंथ चलाते हैं और पारखी नाम रख रखे पारख सिद्धांत। वो कहते हैं कि परमात्मा कोई नहीं है ये जीव ही भगवान है यही प्रभु है जीव खुद ही सृष्टा है। अब पुण्य आत्माओं आत्मा और फिर नाम रखा परमात्मा परमात्मा शब्द क्यों बोलते हो फिर तुम यानी कोई श्रेष्ठ आत्मा भी है जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है हमसे उत्तिष्ठ आत्मा है वो हमारा स्वामी है एक आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा का वहां शरीर दो है इतना नूर का है इतनी चमक है जैसे ये पांच तत्वों से बना है शरीर और इसमें पांच तत्व तो कौन से हैं ये अग्नि वायु और ये जल पृथ्वी आकाश और इसमें कोई सा नहीं दिखता नजर आओ आपने कितना नहीं। इसी प्रकार वहां सतलोक के अंदर एक नूरी शरीर है तेज एक तेज तत्व से और उससे इतना सुंदर शरीर बनता है मुलायम सा और ना वो कभी ओल्ड होता बुढ़ा नहीं होता सदा युवा रहता है और उसमें ना बीपी हाई हुआ ना लो हुआ क्योंकि वो ब्लड से बना हुआ नहीं है। तो ऐसा ही परमेश्वर का शरीर है वो परमात्मा है उनका इतना तेज है सूर्य का उनके शरीर में इतना तेज है वो इतने सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है हमारा इतना तेज है सोलह सूर्य का प्रकाश होता है इतना तेज आत्मा का शरीर है और उस परमात्मा के एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, जब सतलोक के अंदर जो प्रभु के शरीर की स्थिति है तो भी वो प्रकाश फीका रह जावे प्रभु के उस नूर के सामने। इतना नूर, इतना सुंदर है, मतलब जैसे कहा अगर ना किसी लड़के बहन भाई को देखे कि भी इतना इतना कितना नूर है इसके चेहरे पे, यानी कितना सुंदर है, कितनी चमक है इसकी, तो ऐसे वो परमात्मा के शरीर की चमक है और वहां आत्मा का शरीर भी नूर एक तत्व से बना हुआ है। अब हम वहां से आए हैं और जब तक वहां नहीं जालेंगे हमें सुख नहीं हो सकता। वहां जाने के लिए कौन सी विधि अपनानी है, कैसी अपनानी है, कैसा संत चाहिए, कौन सा मंत्र चाहिए, वो ये दास बतावेगा। वैसे तो अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के मां अरविंद साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना, अपनी अपनी सभी बताते हैं ये दाप कर लो, ये भक्ति कर लो, ये मंत्र कर लो, एक माला दे दी ले कंठी तू चेला मैं गुरु, ये कोई बात हुई। अब यहां आते हैं बिहार के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, ये बहुत अच्छी आत्मा जो इतनी दूर सफर करके आई, बाल बच्चों को लेकर आए, वृद्ध भी बूढ़े भी, अब इनको उल्टे रंग में रख रखा वहां नकली कबीर पंथियों ने, एक तुलसी की लकड़ी की माला दे रखी है गले में गाल दी, जो कहा माला नहीं उतारेंगे कंठी, हो कंठी नहीं खोलेंगे, इस कंठे ने शर्म मार लिया, बता क्या करेगी इस कंठी का, क्या करोगे। अरे परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार से चलो, और तुम सारी क्रिया करो दुर्गति हो रही तुम्हारी, घर में इतना दुख, शरीर में कष्ट, इस कंठी ने कोई लाभ नहीं दिया तुम्हारे। परमात्मा कबीर जी ने कहा था, ये कबीर जी ने कंठी से सिलसिला नहीं चलाया, ये तो नकली कबीर पंथियों ने बाद में इन भोली आत्माओं को बांधने के लिए सिस्टम तैयार किया। कबीर जी ने केवल एक समय नाम उपदेश लेने के लिए महर्षि रामानंद जी को अपना गुरु बनाने के लिए, गुरु मर्यादा बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो वैष्णु साधु थे रामानंद जी, वो कंठी दिया करते एक तुलसी की माला, एक मणिया, और वो जो है ना वैष्णु साधु माना जाता था। अब परमात्मा ने उनकी शरण ली, रामानंद जी ने कंठी का लिए उसमें नहीं कहा, लेकिन उन्होंने वो जो स्नान करने के लिए गए थे रामानंद जी पंच गंगा घाट पे, और कबीर जी दो ढाई वर्ष का बच्चे का शरीर बनाकर और पैड़िया में लेट गए थे अंधेरे में, सुबह सुबह रामानंद जी का खड़ाऊ शर्म लगी परमात्मा के, और एकदम जब झुके नीचे को, जब कबीर जी ने बच्चे की तरह रोने की लीला की, तो जो ही रामानंद जी झुके नीचे को, उनकी कंठी व एक तुलसी वाली कबीर जी की गले में डलगी। अंधेरे में रामानंद जी को पता नहीं चला, तो फिर ये कथा फिर सुनाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रसंग और सुनाना, इसलिए एक शॉर्ट कट में बता रहे हूं। रामानंद जी के एक शिष्य ने जो सत्संग कर रहा था, कबीर जी ने उसको टोका था, तो रामानंद जी के शिष्य ने पूछा कि तू वेद शास्त्रों के बारे में कैसे जानता है, तूने तिलक क्यों लगा रखा है, क्या तूने किसी से नाम ले रखा है। परमात्मा बोले हाँ, मैंने उसी से नाम ले रखा जिसे तूने ले रखा है। अब वो रामानंद जी ब्राह्मण और वो सत्संग कर रहा था, वो रामानंद जी का शिष्य ऋषि, इस बात से वो कुपित हो गया कि झूठ बोलता है तू, हमारे गुरु जी तो किसी को नाम नहीं देते, शूद्र को, तू जुलाहा जाति का, तूने मेरे गुरुदेव को नीचा दिखाया है। रामानंद जी के पास ले गए, स्वामी जी ने जब उनसे वार्ता की तो परमात्मा ने, रामानंद जी ने कहा कि तूने मेरे से कब नाम लिया। परमेश्वर ने बताया कि ऐसे ऐसे आप स्नान करने गए थे और मैं वहां लेटा हुआ था, आपकी खड़ाऊ मेरे सर में लगी थी, मैं बालक था छोटा सा, और तब आपने मुझे कहा था बेटा राम राम बोल, और ये कंठी आपने मेरे गले में डाल दी थी, वो डली थी वैसे कुदरती झुकने के कारण रामानंद की निकल गए और परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई थी। तो कबीर जी ने कहा, रामानंद जी ने कहा कि मैं शिष्य जिसको बनाता हूं उसको कंठी देता हूं, ये माला देता हूं एक मन के की, तेरे पास है काट कर दिखा दी, कहा जी ये लो। कहने लगे मैंने तेरे को कब दी के जिस दिन ऐसे ऐसे कहानी बनी उस दिन आपने मुझे दी थी। तो वो परमात्मा ने केवल इसलिए वो कंठी डाली थी कि इसकी भ्रम तोड़ दूं इस रामानंद जी को। फिर रामानंद जी से चर्चा की, ज्ञान गोष्ठी हुई, फिर रामानंद जी को सतलोक दिखा परमेश्वर ने। वो महर्षि फिर परमात्मा के चरणों में गिर गया था कबीर जी के, और रामानंद जी ने भी वो कंठी तोड़कर फेंक दी थी और कबीर जी ने भी फेंक दी थी, क्योंकि इन कंठियों से भगवान नहीं मिला, इस मंत्र और साधना से परमात्मा प्राप्ति होगी। अब वो टप्पस फिर क्या था, रामानंद जी के जो शिष्य थे वो रामानंद जी से विरुद्ध हो गए कि ये ब्राह्मण होकर और जुलाहे के साथ रहता है, इसने नाश कर दिया। तो उन नकलियों ने वो कंठी वाला सिलसिला फिर जारी रखा, लेकिन परमात्मा कबीर जी ने केवल सब चीजों से दूर किया। परमात्मा ने कहा है, कंठी माला सुमरणी सभी सिलसिला मेट, इन सबको भूल जा। और माला तो आपने, अब जैसे आप आरती में पढ़ते हो, आप संध्या आरती में पढ़ते हो, तत्का तिलक और ध्यान की ज्योति, ये मालाएं हमारी हैं, ये हमारे गहने हैं, एक भक्त के होने चाहिए। और परमात्मा ने कभी भी ऐसा तेज की आरती, तेज का आगे, तेज का भोग, तेज को लागे, तेज पखावज, तेज ही बाचे, तेज ही नाचे, तेज ही गावे, तेज का थाल तेज की बाती, तेज का पुष्प तेज की पाती, तेज के आगे तेज विराजे, कह कबीरा आरती साजे। अदली आरती अदल समोई, निर्भय पद्म मिलना होई, दिल का दीप पवन की बाती, और चित का चंदन पांचों पाती, तत्का तिलक ध्यान की दोती, और मन की माला अजप्पा ज्योति। ये हाथ में माला लेकर जाप करना, इसको भी मालिक ये कहते हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी क्योंकि हम जैसे बच्चे को पहले कह खै सिखाते हैं तो तख्ती पर लिखकर, फट्टी पर लिखकर सिखाया करते थे, अब ऐसे सिखाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि तत् का तिलक और ध्यान की दोती, तत् का तिलक यानी इस तिलक को लाने के लिए नहीं कहा कि आपके पास तत्व ज्ञान हो, और तत्व ज्ञान आप जब भी बोलोगे तुरंत प्रकट हो जाएगा, ये तेरा तिलक है। और ध्यान की दोती मन की माला, गले में डालने से कोई लाभ नहीं, जैसे मन है इसको परमात्मा के नाम पर लगाए रख और इसको दिन रात इसके संबंधित जोड़े रख, ये वास्तविक माला है। तो ये परमात्मा हमें यही बताना चाहते थे कि तुम जो साधनाएं कर रहे हो इनसे कोई लाभ नहीं होगा, और कोई विकार नहीं छोड़ रखे उन कबीर पंथियों ने, सारे जर्दा खावे, बीड़ी पीवे और तमाखू खावे और पूजा, क्योंकि उनसे लाभ तो होना नहीं कोई। अब जैसे ये दास इस हरियाणा में यही इसी तरह के तमाखू और शराब यहां भी एक नंबर पर है, खूब पीवे हैं और तमाखू भी खाते हैं, लेकिन जब इन बच्चों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं को ये ज्ञान होगा कि बुराई है और हमारे बंधन का कारण है तो तुरंत छोड़ देंगे। देखा देखी बुराई लगाई है, वो पी रहा है मैं भी पी लूं, ले पी ले, ले। वो पीने वाला, एक पीने वाला 200 ने आदत खराब करेगा। अब हमारे बच्चे उनको त्याग रहे हैं, सभी मेरे दास के अनुयायी हैं, परमेश्वर कबीर जी के सेवक हैं, ये अब सब बुराई त्याग देते हैं। इनको पता है कि भगवान चाहिए तो त्यागना पड़ेगा, ना तो मर कुएं में पड़ गए, फिर कोई लाभ नहीं होगा, हाहाकार मच जाएगी, घर में भी दुख होगा, शरीर में भी कष्ट हो जाएगा। तो ईब 10 बच्चा ने छोड़ी, हमारा ने उन 200 की छुड़वाई, अब हजारों ने छोड़ी तो 10,000 की छुड़वा दी, 1,00,000 ने बुराई छोड़ी तो 10,00,000 की छुड़वा दी। तो बुराई घर भी ऐसे किया था, एक पीने लगा 200 को सिखा दिया, 200 ने फिर 200 को सिखा दिया, हजारों को सिखा दिया। तो ऐसी ही बुराई हम हटाएंगे समाज से, दास का ये मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि इसके बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे किसान खेत बीजता है और खेत को संवारेगा नहीं, वैसे बीज दे उसको कुछ नहीं मिलना, व्यर्थ प्रयत्न है, वो बीज भी बर्बाद करना है। तो दास का उद्देश्य है कि पहले आपको हर बुराई से दूर करूं जो आवश्यक ही नहीं है हमारे मनुष्य जीवन की, और फिर ये नाम रूपी बीज आप में बोऊंगा, देखियो परमात्मा कितना सुख देगा आपको। अब कल आपने सुना था तेल भर मछली खा के, परमेश्वर कहते हैं और लाख गऊ दे दान, एक गऊ लागड़ गऊ दूध वाली गऊ दान देने का बहुत पुण्य लिखा पुराणों में। कहते हैं तिल भर मच्छी यानी मांस खा के एक तिल जितना और लाख गऊ दे दान, उससे भी कोई लाभ नहीं होगा तो भी नरक निदान है। ओहो, तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं जरा सा भी तमाकू खा लिया इस नाम लेने के बाद, और बीड़ी सिगरेट पी ली या पान खा लिया जिसमें नशा होता है, तो उसी दिन तेरा भक्ति नष्ट हो जाएगी, ये नाम नहीं रहेगा। अब समझदार व्यक्ति नहीं गलती करेगा, जैसे माता गर्भ को रख यतन बना और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जा। किसी बहन को 5-7-10 वर्ष में कोई गर्भ रहा हो, फिर वो रात में भी दुखी रहती है, चिंतित रहती है, जब वो करवट लेती है तो भी एकदम उठ के बैठ जाती है, कहीं मेरे बच्चे पर दबाव तो नहीं पड़ गया और ये खराब तो ना हो गया है, भगवान मेरा गर्भ खराब ना हो जाए, तो वो फिर उसको प्रफुल्लित कर लेती है, फिर वो बालक वो लाल उसको प्राप्त होता है। ऐसे ही ये भक्ति है, इसको इतने जतन से रखना पड़ेगा अपने, यदि परमात्मा चाहते हो ना यह आने की कोई आवश्यकता नहीं, क्यों डले ढो खाम का। और आज देखना कुछ दिनों के अंदर ये समाज सुधरेगा, आपकी हर इच्छा परमात्मा पूरी करेगा, घर का दुख मिटेगा, शरीर का कष्ट मिटेगा जो लाखों रुपए से भी ना मिटना था, तो फिर आपको कितनी शांति और कितनी खुशी होगी और कितनी उमंग से आप आओगे। पहले वो बीमारी पर पैसा लगाते थे, फिर दान में खर्चोगे और दान से आपको पुण्य होगा। कहते हैं धर्म तो दसकै नहीं दसकै तीनों लोक, और खैर आयत में खैर है कि तुम पोग। अब हमने ये साधना करके क्यों करते हैं साधना, कि हम सुख सागर प्राप्त करें, हम सतलोक में चलें। हम कहां से आए थे और क्यों फंसे काल के जाल में है, आप जी को अब एक सृष्टि रचना सुनाना चाहेगा ये दास, जो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही आकर बताया है। क्या बताया था परमात्मा ने, धर्म दास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम नियारा, यही कथा जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ, भरम गए जग वेद पुराणा, आदि राम का भेद न जाने। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा ने यह कहा था कि धर्मदास अब तुझे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूं, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, और इस तेरे देवन की उत्पत्ति भाई, तेरे तीनों देवताओं का जन्म कैसे हुआ ये बताता हूं। अब धर्मदास जी चिंगर गया कि हे महाराज आप तो बड़े, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी मुसलमान फकीर के रूप में मथुरा में मिले थे, उस पवित्र आत्मा धर्मदास जी को, और परमात्मा ऐसे काटे का ज्ञान सुना रहे थे, धर्मदास जी उकस उकस के नाराज हो रहे थे अंदर अंदर से कभी, और फिर ज्ञान तथ्य देखकर सामने गीता और वेदों को और पुराणों को फिर कुछ मन में सोचने पर विवश भी हो रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी ये दास आपको एक बार मौखिक सुनाएगा वर्बली, और फिर आपको प्रमाण दिखाएंगे अपने ही सदग्रंथों में। हे भगवान, तो पुण्यात्माओं पूरा विश्व परमेश्वर की परिभाषा से अपरिचित है, और जब तक हम परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं होंगे हम भक्ति भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नकली संत ये महंत ये मंडलेश्वर महर्षि आपका ऐसे ही हंडोला बनाए रखेंगे, ये नाम ठीक है वो ठीक नहीं है, ये ऐसी भक्ति करो ये ऐसा कर लो, कोई बात हो। अब एक भगवान और उसके पाने का रास्ता भी एक ही है। आम का बीज एक ही है, आम की गुठली, और बबूल का बीज बीज करने का ये भी आम देगा कभी नहीं लगेगा। सबसे पहले परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी अकै लोक में रहते थे। अकै लोक, उसको अनामी लोक भी बोलते हैं। उसमें परमेश्वर अकेले थे। उस पूर्ण परमात्मा ने, कबीर जी ने अपने वचन से नीचे के तीन लोक और रचे, तीन लोकों की रचना की। वो कौन कौन से हैं? अकै लोक से नीचे वाला अगम लोक, उससे नीचे फिर अलक लोक, और लास्ट वाला सतलोक। अब वही पूर्ण परमात्मा अन्य तीन लोकों में भी स्वयं ही अन्य रूप धारण करके विराजमान हो गए। अब आपको सतलोक की रचना के विषय में जानकारी देंगे। परमेश्वर कबीर जी ने, यानी सत्य पुरुष ने, सत्य पुरुष का अर्थ होता अविनाशी परमेश्वर। अविनाशी प्रभु ने, सत्य पुरुष ने अपने एक वचन से वहां 16 द्वीप रचे। 16 द्वीप, और फिर 16 वचनों से, एक एक वचन से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की। उनमें से एक का नाम अचिंत और एक का सहजदास जोगजीत, ऐसे ये 16 पुत्र हैं उत्पन्न किए। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने अरुण सब से कहा कि तुम अपने अपने द्वीप में जाओ, वहां रहो। उसके बाद कभी सत्य पुरुष ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सृष्टि रचना करो। अचिंत ने अपने वचन से ये अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म बोलते हैं। अक्षर पुरुष वहां चला गया, एक मान सरोवर है जो प्रभु ने रचा था शब्द के साथ ही। उस मान सरोवर में अमृत जल है, स्नान करने के लिए अचिंत चला गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं हमारा, श्वासों से शरीर हो तो फिर वो गिनती में आ जाता है, अमर नहीं रहे। जैसे एक ट्यूबलेस टायर होते हैं, उसमें हवा नहीं भरनी पड़ती, रबड़ के टायर होते हैं, और एक ट्यूब वाले वो तीसरे दिन पाटे रहे, पटाखा बोलिया रहा उसमें। तो ऐसे वहां शरीर बगैर हवा, बगैर प्राणों के, बगैर श्वास के है। वो जाकर के अचिंत मान सरोवर में नहाने गया था, वहां जाकर लेट गया और मस्ती में नींद आ गई, बहुत गहरा चला गया। अब काफी समय तक बाहर नहीं आया, तो परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने उसी अमृत जल से जल लिया अपने हाथ में, और अपनी वचन की शक्ति से एक अंडा बना दिया। अंडा बहुत विशाल अंडा था, और उसमें एक आत्मा अपने वचन से उसके अंदर प्रवेश कर दी, अपने ही शरीर से निकालकर, आवाज वचन से बनाकर। वो अंडा, उस आत्मा उसके अंदर थी, वो अंडा नीचे चला गया गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ, जल में छोड़ दिया। अब वो अक्षर पुरुष उसकी गड़गड़ाहट से जाग गया, निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद सोया हो और उसको कोई जगा दे, एक बार उसकी, उसको दुख होता है, क्रोध आता है, तो उस जो ही उसकी निंद्रा भंग हुई अक्षर पुरुष की, उसने देखा किसने मेरी निंद्रा भंग की, उस थोड़े से कोप से, क्रोध से अंडे की तरफ देखा, अंडा फट गया, उसमें से ये ज्योति निरंजन ब्रह्म काल निकला। आकाशवाणी की परमात्मा सत्यपुरुष ने, कबीर जी ने, कि तुम दोनों बाहर आओ, अक्षर पुरुष तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए ये सब क्रिया की, तुम दोनों बाहर आओ। दोनों बाहर आ गए और कहा तुम अचिंत के द्वीप में जाओ। दोनों वो एक द्वीप में 3 रहने लगे और बाकी एक एक द्वीप में वो 15 और थे। अब परमात्मा ने कहा चिंत तुम सृष्टि नहीं रच सकते। परमात्मा ने इसलिए ढीला छोड़ा था कदी बच्चे फिर बाद में बकवाद करें। अब अचिंत बैठा बैठा देख रहा अक्षर जाकर सो गया, अक्षर पुरुष वो परब्रह्म। अब तुम कोई सृष्टि नहीं करोगे, मैं ही करूंगा। तब परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जितने भी आज कुत्ता गधा सुअर चींटी हाथी देवता मनुष्य बने हैं ये सब परमेश्वर कबीर जी के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने अपने वचन से सभी असंख्य आत्माओं की वहां उत्पत्ति करी और सबको बहुत बड़े बड़े महल वहां दिए अलग से रहने के लिए। वहां आपका परिवार था, परिवार के परिवार थे वहां पर आपके, कोई काम नहीं, सारा दिन वहां सैर सपटे, बड़े बड़े वहां पर काजू किसमस सेब संतरे वो नूर के बने हुए, सदा बाहर वृक्ष है वहां पर, अमृत जल है वहां पीने के लिए, दूधों की नदी बह रही है वहां पर। हम उसको छोड़ आए, कैसे छोड़ आए? अब हम वहां ठाट से रहा करते थे, कोई दुख नहीं, किसी प्रकार की मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं। अब इस ज्योति निरंजन छर पुरुष ने इस काल के मन में आई कि हम तीन एक लोक में एक द्वीप में और बाकी सभी मेरे भाई हैं जितने भी हैं ये सब अलग अलग द्वीप थे आपके, अलग अलग बहुत सुंदर, और हम तीन एक द्वीप में। तो इसने सोचा मैं तप करके अलग से राज प्राप्त करूंगा, तप से राज और राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र समानम। इसने एक पैर पर खड़ा होके तपस्या शुरू कर दी, एक पैर पर खड़ा होकर, और ये 70 युग तक तप करता रहा ऐसे। और हम क्यों फंसे इसके जाल में? हम सभी इसको ऐसे एक टांग पर खड़ा होगा और तपस्या करते हुए देखने लगे और अंदर में इसके प्रति हमारी प्रेम भावना बन गई, को हो देख कितना एक पैर पर खड़ा हो हो। अवा बीमारी हमारे आज भी विद्यमान है, ये बुराई ये बीमारी आज भी अपने लगी हुई है। जैसे हीरो और हीरोइन, ये अभिनेता और अभिनेत्री अपने पेट के लिए चटक मटक करते हैं, डांस डूंस करते हैं, अच्छा मेकअप मेकअप करके और फिल्म बनाते हैं। और ये भोले प्राणी युवा बच्चे उनको देख देख कर क्योंकि वो मेरा फेवरेट हीरो है, वो मेरा फेवरेट हीरो है, टट्टू के फेवरेट है बता, वह नाचते कूदा अपने पेट के लिए, तुम उसको उसके ऊपर आसक्त हो रहे हो। अब उनमें से कोई भी हीरो या हीरोइन अभिनेता या अभिनेत्री इसार में या बरवाला में आ जा, देखे इन जवान बच्चों की वहां समूह कितना कट हो जा, कितने इकट्ठे हो जाएंगे और नो देखेंगे वो खड़ा इतनी देर किलोमीटर दूर मंच पर, वो खड़ा वो खड़ी देख, और सारा दिन धक्के खा के वापिस आ जा, बता के ले आए उसने देख के। तो उसके ऊपर बेमतलब हम आसक्त होने की बीमारी हमारा वहां लगी थी।